As the Savior concluded the Sermon on the Mount, he emphasized the eternal truth that only by doing the will of the Father is the saving grace.
जैसे कि उद्धारकर्ता ने पहाड़ पर उपदेश का समापन किया, उन्होंने इस सच को महत्व दिया कि केवल पिता की इच्छा पूरी करने से पुत्र की मुक्ति का अनुग्रह प्राप्त होता है। जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। उस दिन बहुत से मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम पे भविष्यवाणी नहीं की और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकाला नहीं और तेरे नाम से बहुत को अचंभे काम नहीं किए? तब मैं उनसे खुलकर कहूंगा कि मैंने तुमको कभी नहीं जाना। एक रुकम कमरने वालों, मेरे पास से चले जाओ। हमारी समझ इस घटना के बारे में बढ़ती है जैसे कि हम इसके प्रेरित संशोधन पर विचार करते हैं। महत्वपूर्ण से बाइबल के राजा जेम्स के संस्करण में विवरण है, मैंने तुमको कभी नहीं जाना, जिससे जोसेफ स्मिथ के अनुवाद किया, तुम में मुझे नहीं जाना, मैं बदल गया। 10 कुमारियों के दृष्टांत पर भी विचार करें। ध्यान रखें कि यह पंचमुख और तैयार कुमारियां अपने चिरागों के लिए तेल प्राप्त करने तब गई जब उन्होंने दूल्हे से जाकर भेंट करने के लिए रोना सुना। जब वह मोल लेने को जा रही थी तो दूल्हा आ पहुंचा और जो तैयार थी वह उसके साथ ब्याह के घर में चली गई और द्वार बंद किया गया। इसके बाद वह दूसरी कुंवारी आकर कहने लगी, हे स्वामी, हमारे लिए द्वार खोल दे। उसने उत्तर दिया कि मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैं तुम्हें नहीं जानता। हम में से हर एक के लिए इस दृष्टांत का अर्थ विस्तार से एक दूसरे प्रेरित संशोधन द्वारा किया गया है। महत्व के साथ यह वाक्य है कि मैं तुम्हें नहीं जानता, जिसका वर्ण बाइबल के राजा जेम्स के स्मरण में दिया गया है। उसका स्पष्टीकरण जोसेफ स्मिथ के अनुवाद में यह कह दिया गया कि तुम मुझे नहीं जानते। हम सबके लिए यह वाक्य तुम्हें मुझे कभी नहीं जाना और तुम मुझे नहीं जानते एक गहरे आत्मिक अनंत दर्शन की वजह होनी चाहिए। क्या हम केवल उद्धारकर्ता के बारे में जानते हैं या हम निरंतर तीव्रता से जान रहे हैं? हम कैसे प्रभु को जान सकते हैं? ये अंतरात्मा के संबंधित प्रश्न मेरे संदेश का केंद्र है। मैं गंभीरता पवित्र आत्मा को आमंत्रित करता हूँ कि जैसे कि हम मिलकर इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करते हैं। मार्ग और सच और जीवन मैं ही हूँ। बिना मेरे द्वारा पिता के पास नहीं पहुँचा जा सकता। यदि तुमने मुझे जाना होता तो मेरे पिता को भी जानते। हम पिता को जानते हैं और जब हम उसके प्रिय पुत्र को जानते हैं। इस जीवन का विशाल उद्देश्य केवल पिता के एकलौते पुत्र के बारे में सीखना ही नहीं परंतु उसको जानने का प्रयास करना भी है। 4 आवश्यक कदम प्रभु को जानने में हमारी मदद करते हैं। उन पर विश्वास का अभ्यास करना, उनका अनुसरण करना, उनकी सेवा करना और उन पर भरोसा करना। उनमें विश्वास का अभ्यास करें। यीशु मसीह में विश्वास का अभ्यास करना उन्हीं दया और अनुग्रह का पर निर्भर करना है। हम उद्धारकर्ता को जानना शुरू करते हैं जब हम अपनी आत्मिक शक्ति को उत्तेजित करते हैं और उनकी शिक्षाओं को परखते हैं। यहाँ तक कि जब हम उनके शब्दों को अपनी आत्मा के एक हिस्से में स्थान देते हैं, जैसे कि हमारा विश्वास प्रभु में बढ़ जाता है। हम उनमें विश्वास करते हैं और उनके आत्मविश्वास से मुक्ति की शक्ति, चंगाई और दृढ़ता प्राप्त करते हैं। सच्चा विश्वास प्रभु पर केंद्रित होता है और हमेशा धार्मिक कार्य की ओर अगुवाई करता है। प्रकाशित धर्म और पहला सिद्धांत यीशु मसीह पर विश्वास है। सभी धार्मिकता की नींव और सभी बुद्धिमान प्राणियों में कार्रवाई का सिद्धांत है। मुक्तिदाता ने यह घोषित किया कि क्योंकि यदि सिद्धांतों के अनुसार कार्य करना प्रमुख है, विश्वास को ग्रहण और प्रयोग करने के लिए विश्वास कम कर्म बिना मृत्यु है। हमें केवल वचन पर सुनने वाले नहीं बल्कि उस पर चलने वाले होना चाहिए। परमेश्वर के वचन सुनना और उद्धारकर्ता में विश्वास का आत्मिक उपहार ग्रहण करना बारीकी से संबंधित है, क्योंकि सुनने से विश्वास आता है और परमेश्वर के शब्द द्वारा सुनना है। हम उसे और उनसे और उसकी आवाज से परिचित धर्मशास्त्रों के में दिए गए उनके शब्दों को पढ़ते और उनका भोज करते हैं। सच्चे उद्देश्य से पिता से पुत्र के नाम में प्रार्थना करो और पवित्र आत्मा की संगति को खोजते रहो। मसीह के सिद्धांत को अपने जीवन में सिखाना और लागू करना उनमें विश्वास का उपहार ग्रहण करने के लिए आवश्यक है। प्रभु में विश्वास का प्रयोग करना एक आवश्यक तैयारी है उनका अनुसरण करने के लिए। और यीशु ने गलील की झील के किनारे फिरते हुए दो भाइयों अर्थात शमौन को जो पतरस कहलाता है और उसके भाई अद्रियस को झील में जाल डालते देखा क्योंकि वे मछुआरे थे और उसने कहा मेरे पीछे चले आओ और मैं तुम्हें मनुष्य को पकड़ने वाला बनाऊंगा। वे तुरंत जालों को छोड़कर उसके पीछे चले गए। गुरु को सुनने और उनका अनुसरण करने में पतरस और अद्रियस का उदाहरण सशक्त है। इसी तरह से उद्धारकर्ता आपको और मुझे यह निर्देश देते हैं कि यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। अपना क्रूस उठाना तब होता है जब अपने आप को सब अभक्ति और हर संसारिक वासना से वंचित करें और प्रभु की आज्ञाओं का पालन करें। उद्धारकर्ता ने हमें शिक्षा दी कि हमें उसकी तरह बनना है। इस प्रकार प्रभु का अनुसरण करना उसी के तरह कार्य करने को शामिल करता है। हम लगातार प्रभु को जानते हैं जब हम उनके बलिदान द्वारा उनकी तरह बनने को खोजते हैं। अपने नश्वर सेविकाई में यीशु ने पथ चिन्हित किए, मार्ग का नेतृत्व किया और परिपूर्ण उदाहरण स्थापित किया। एक सही सोच उनके चरित्र की परिपूर्णता और विशेषताओं का स्पष्ट उद्देश्य प्रदान करता है। जब हम समर्पित शिष्यत्व के मार्ग का अनुसरण करते हैं, इसी प्रकार उद्धारकर्ता का अनुसरण करना हमें वास्तविक ज्ञान ग्रहण करने में सक्षम बनाता है ताकि जो जीवन के मार्ग का हम अनुसरण करें वह परमेश्वर की इच्छा के अनुसार। इस तरह का ज्ञान कोई अज्ञात रहस्य नहीं है और हमारे संसारिक व्यस्य या साधारण नश्वर चिंताओं पर इनका मुख्य रूप से ध्यान केंद्रित नहीं है, बल्कि अनुबंध के मार्ग के साथ स्थिर और निरंतर प्रगति वह जीवन का मार्ग है जिससे वह प्रसन्न होते हैं। मार्मन के पुस्तक में लेही का सपना वह मार्ग पहचानता है जिसका हमें अनुसरण करना चाहिए। जिन चुनौतियों का सम्मान हम करेंगे और उन उपलब्ध आध्यात्मिक सिद्धांत जो हमारे उद्धारकर्ता के निकट आने और उनका अनुसरण करने में हमारी मदद करेंगे। संकरे और संकीर्ण मार्ग पर दबाव देकर आगे बढ़ना ही है जो वह चाहते हैं हम करें। वह पेड़ का फल चखना और गहराई से प्रभु में परिवर्तित होना आशीष है वह चाहते हैं कि हमें प्राप्त हो, इसलिए हमें इशारा करते हैं मेरे पीछे आओ। दोनों ही प्रभु में विश्वास का प्रयोग करना एक आवश्यक तैयारी है उनका अनुसरण करने के लिए। कैसे एक मनुष्य उस स्वामी को जान सकता है जिसकी सेवा उसने नहीं की और जो उसके लिए एक अजनबी है और उसके हृदय में विचारों और उद्देश्य से दूर है। हर अधिक और पूर्ण रूप से प्रभु को जानने लगते हैं जब हम उसकी सेवा करते हैं, उनके राज्य में परिश्रम करते हैं। जब हम ऐसा करते हैं वह हमें उदारता से साथ स्वर्गीय मदद, आध्यात्मिक उपहार और बदती क्षमता के साथ आशीर्वाद देते हैं। हमें कभी भी अकेला नहीं छोड़ा गया है। जब हम उसकी अंगूर की वाटिका में काम करते हैं, उन्होंने ये घोषणा की क्योंकि मैं तेरे चेहरे के समक्ष आऊंगा, मैं तेरे दाहिने और बाएं हाथ की ओर रहूंगा और तेरी और मेरी आत्मा आपके मन में होगी और मेरे दूत आपके चारों ओर रहेंगे आपको संभालने के लिए। हम उद्धारकर्ता को जानने लगते हैं जब हम वह जानने का प्रयास करते हैं जहाँ वो चाहते हैं हम जाएं। जब हम वो कहने का प्रयास करते हैं जो वो चाहते हैं हम चाहें और जब हम वह बनते हैं जो वह चाहते हैं हम बने, जैसे कि हम उन पर विनम्रता से अपनी पूरी निर्भरता को स्वीकार करते हैं, वह हमारी सेवा करने की क्षमता और अधिक प्रभावी ढंग से बढ़ाता है। धीरे धीरे हमारी इच्छा उनकी इच्छाओं को साथ साथ अधिक पूरी तरह से पूर्ण हो जाती है और उनके उद्देश्य हमारे उद्देश्य हो जाते हैं, कुछ इस तरह से कि हम ऐसा कुछ नहीं मांगते कि उनकी इच्छा के विपरीत हो। उनकी सेवा करना हमारे हृदय बल और शक्ति की मांग करता है। इस कारण से निस्वार्थ दूसरों की सेवा करना विरोध करता है। प्रकृति मनुष्य की आत्मा केंद्रित और स्वार्थी झुकाव हो, हमारा प्रेम उनके लिए बढ़ता है जिनकी हम सेवा करते हैं। और क्योंकि दूसरों की सेवा करना परमेश्वर की सेवा करना है, हम उन्हें और अपने भाई बहन और को और गहराई से प्रेम करते हैं। इस तरह हम प्रेम के उदारता के आध्यात्मिक उपहार का प्रतिकरण करते हैं, यहाँ तक कि मसीह का पवित्र प्रेम। पिता से अपने हृदय की पूरी क्षमता से प्रेम करो कि तुम इस प्रेम के भर जाओ जो वह उन सब पर अर्पित करता है जो उनके पुत्र यीशु मसीह के अनुयायी है। जबकि वे प्रकट हो, हम उनके सामने हो, क्योंकि हम उनको वैसा ही देखेंगे जैसे कि वो हो, कि हमें वह आशा रहे कि हम भी शुद्ध किए जाएंगे जैसे कि वे शुद्ध हैं। मैं गिरजा के उस सदस्य से परिचित हूँ जो धर्मशास्त्रों में सम्मिलित और पुलपिट से घोषित सिद्धांत और नियमों को सच के रूप में स्वीकार करते हैं, और फिर भी उनके लिए यह विश्वास करना कठिन हो जाता है कि वह सुसमाचार के सत्य उनके जीवन और हालात में विश्वास रूप से लागू होते हैं। ऐसा लगता है उन्होंने उद्धारकर्ता के वादे वाली आशीषों उनके लिए उपलब्ध हैं और उनके जीवन के काम कर सकती है। मैं उन भाई बहनों का भी सामना किया है जो कर्तव्यनिष्ठ से सेवा करते हैं, लेकिन जिनके लिए पुनर्निर्माणित सुसमाचार अभी तक सब जीवित और उनके जीवन के बदलाव की वास्तविकता नहीं लाया गया है। नए नियम में एक पिता ने उदारकर्ता से अपने पुत्र को चंगा करने के लिए कहा। यीशु ने उत्तर दिया, यदि तू विश्वास करता है, सब कुछ संभव है उसके लिए जो विश्वास करता है। बालक के पिता ने तुरंत गिड़गिड़ा के कहा और आंसुओं के साथ कहा, हे प्रभु, मैं विश्वास करता हूँ, मेरे अविश्वास की मदद कर। मैंने इस पिता के अनुरोध पर कई बार विचार किया है, मेरे अविश्वास में मदद करें। मुझे आश्चर्य है, यदि इस व्यक्ति की सिफारिश का उद्देश्य मुख्य रूप से यीशु को हमारा मुक्तिदाता और चिकित्सक शक्ति में विश्वास नहीं करना था, उन्होंने मसीह को परमेश्वर का पुत्र स्वीकार कर लिया होगा, लेकिन शायद उसे स्वामी के चिकित्सा शक्ति में विश्वास करने के लिए मदद की आवश्यकता थी, जो वास्तव में इतनी व्यक्तिगत हो सकती थी कि उन्होंने अपने प्रिय पुत्र को आशीष दिलाई। उसने मसीह का पर आम और तौर पर विश्वास रूप से व्यक्तिगत तौर पर विश्वास नहीं किया। हम अक्सर अपने उसके बारे में गवाही देते हैं जो हमें जानते हैं कि सच है, लेकिन शायद हम में से प्रत्येक के लिए अधिक उचित प्रश्न यह है कि क्या हम उस पैर विश्वास करें जो हम जानते हैं। पवित्र धर्म विधियां जो कि सही प्रोहित्य अधिकार से दी जा गई हैं, उद्धारकर्ता पर विश्वास करने के लिए, उनको जानने के लिए, अनंत में जो हम जानते हैं उस पर विश्वास करने के लिए, और मिल्कैसिक पुरोहित सुसमाचार का प्रशासन करना है और राज्य के सहस्य की कुंजियों को पकड़ कर रखता है, यहाँ तक कि परमेश्वर की ज्ञान की कुंजी है। हम प्रभु पर विश्वास और उनको जानने लगते हैं जब परमेश्वर के ज्ञान की कुंजी का प्रकाश मिल्कैसिक पुरोहितों के द्वारा होता है जो द्वार को खोलती हैं और जिसे हम सब के लिए अपने जीवन में धार्मिकता की शक्ति प्राप्त करना संभव है। हम उद्धारकर्ता को उनका अनुसरण कर मानते और जानते हैं। जब हम तीव्रता से उनकी चाबी मुखाकृति से पवित्र धर्म विधियों को ग्रहण और ईमानदारी से सम्मानित करते हैं, हम मसीह पर विश्वास और उनके अपने निजी अनुभव के बलिदान के पवित्र चिकित्सा मजबूती और पवित्रीकरण से जानते हैं। हम मालिक पर विश्वास और उनको जानने लगते हैं जब उनके शब्द की शक्ति हम से जड़ पकड़ लेती है जो हमारे हृदय में दिमाग में लिखी जाती है, और हम अपने सभी पापों को त्याग सौंप देते हैं, उन्हें जानने लगते हैं। उन पर विश्वास करना यह भरोसा करना है कि उनकी भरपूर आशीषें हमारे व्यक्तिगत जीवन और परिवारों में उपलब्ध और लागू हैं। हम अपनी पूरी आत्मा से उन पर विश्वास करते हैं जब हम अनुबंध मार्ग के साथ में तीव्रता से आगे बढ़ते हैं, अपनी इच्छा को उनकी इच्छा से की ओर समर्पित करते हैं, उनकी प्राथमिकताओं और हमारे समय निर्धारण को उनको प्रस्तुत करते हैं। उन पर विश्वास करना शक्ति और वादों को सच मानकर स्वीकार हमारे जीवन के परिक्षेप और शांति को आमंत्रित करना है। भविष्य के एक दिन में हर घटना झुकेगा और और हर जुबा स्वीकार करेगी कि यीशु ही मसीह है। उस धन्य के दिन पर हम जान लेंगे कि वह हम सब को हमारे नाम से जानते हैं, और मैं गवाही और वादा करता हूँ कि हम सिर्फ प्रभु के बारे में जान नहीं सकते, पर उनको जान सकते हैं जब हम उन में अपने विश्वास का अभ्यास का उनका अनुसरण करते हैं, सेवा और विश्वास करते हैं। ऐसी में गवाही उनके पवित्र नाम में देता हूँ। आमीन।